नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत अपनी रणनीतिक समुद्री स्थिति और मजबूत नौसैनिक क्षमताओं के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले एक दशक में निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज FIR पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विवरण मांगा। छठ पूजा पर व्रती आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी में चेन्नई से 560 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित तूफान के कल तक तट से टकराने की आशंका से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की समुद्री दृष्टिकोण सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। श्री शाह ने आज मुंबई में भारतीय समुद्री सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि हाल के वर्षों में किए गए व्यापक संरचनात्मक सुधारों से भारत एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में सामने आया है।
भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता।
इस अवसर पर पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत समुद्री सप्ताह दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री समारोह में से एक बन गया है। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। श्री सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात अब रिकॉर्ड 23,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में SIDM वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश का घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और इसमें निजी क्षेत्र का 33,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान है।
पिछले 10 वर्षों में आप सबने, पूरे डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम यह है कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में जहां अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, अब वह 1.51 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें से 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज स्टेट हाउस में शेसल्स के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले से मुलाकात की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि इस दौरान भारत सेशल्स का साझा विरासत, संस्कृति और लोगों के आपसी तालमेल पर आधारित बहुआयामी संबंधों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज क्वालालंपुर में आसिया बैठक से इतर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को विकसित करने की श्री लक्सन की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर डिजिटल अरेस्ट मामले पर उनके द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का विवरण मांगा है। न्यायालय ने देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को देखते हुए सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने पर भी विचार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सेना आज 79वीं इन्फेंट्री दिवस मना रही है। यह दिन स्वतंत्रता भारत की पहली सैन्य कार्रवाई की स्मृति को मनाया जाता है, जब भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में हुए पहले हमले को विफल कर दिया था। इस अवसर पर इन्फेंट्री के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने सभी पूर्व सैनिकों और सेवारत इन्फेंट्री जवानों को हार्दिक बधाई दी। अपने संदेश में श्री कुमार ने उनके अटूट साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण की सराहना की।
On this day, the nation pays tribute.
आज के दिन राष्ट्र सेना के उन बहादुर जवानों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिनकी वीरता और समर्पण ने हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा की है। हम सभी वीरों के परिवारों के प्रति कृतज्ञ हैं। मैं इस गौरवपूर्ण अवसर पर सेना के सभी पदों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनके भविष्य तथा राष्ट्र की सेवा में जारी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।
सक्सेस इन देयर फ्यूचर एंडेवर्स इन सर्विस टू।
लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। खरना के बाद कल शाम से शुरू निर्जला उपवास में श्रद्धालु व्रती आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रही है। कल उदयमयन सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ ही चार दिन का ये पावन अनुष्ठान संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि छठ पर्व प्रत्येक के जीवन को सुख समृद्धि से पावन करे। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह पर्व सभी को भगवान सूर्य और छठी मैया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा को अद्वितीय बताया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 आज से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस सप्ताह का विषय है सतर्कता, हमारी साझा जिम्मेदारी। यह शासन और लोक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी में चेन्नई से 560 किलोमीटर की पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की नवीनतम अपडेट के अनुसार अगले 12 घंटे में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य भागों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। तूफान कल तक तट से टकराएगी और आशंका से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक रिपोर्ट।
आसमान में कल से ही बादल छाए हुए हैं। चेन्नई और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इस बीच आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है, जबकि गुंटूर, बापटला, एनटीआर, पलनाडु और पश्चिमी गोदावरी जिलों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री नायडू से बात कर तैयारियों की समीक्षा की। जॉय और अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार।
जीएसटी दरों में कटौती से देशभर के नागरिकों को लाभ पहुंच रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि कैसे अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। जीएसटी 2.0 के तहत हस्तशिल्प, पर्यटन और विशिष्ट उत्पादों पर कर की कम दरों ने बाजारों को व्यापक बनाया है, निर्यात को मजबूत किया है और आजीविका को समृद्ध किया है। नए कर ढांचे के तहत पश्मीना शॉल और कालीन जैसे उत्पादों पर कर की दर पहले के 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस कदम से उन बुनकरों और कारीगरों को लाभ हुआ है जिनकी आजीविका इन शिल्पों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार कश्मीरी बादाम पैकेजिंग उद्योग पर अब 12% के बजाय 5% जीएसटी लग रहा है। इसके साथ ही पर्यटन और 7500 रुपए तक के होटल खर्च पर भी जीएसटी 5% कर दिया गया है। इस निर्णय से पर्यटन रोजगार को बढ़ावा मिला है और स्थानीय व्यवसायों में वृद्धि हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर के निवासी अमित शर्मा ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से व्यापार को बढ़ावा मिला है, क्योंकि अब व्यापारियों को कम जीएसटी देना पड़ रहा है।
जो व्यापारी लोग थे वो जीएसटी पे करते थे, अब जैसे जीएसटी कम हुई है तो उनको काफी अच्छा लग रहा है और बेहतर है। जीएसटी कम होने से कई रोजगार के अवसर और खुलेंगे, लोग और अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
इस जीएसटी युक्तिकरण से लागत कम हो रही है और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे राज्य के लोगों के लिए आय के अवसर बढ़ रहे हैं। रोहन के साथ दृष्टि पुन्यानी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत अपनी रणनीतिक समुद्री स्थिति और मजबूत नौसेना क्षमताओं के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले एक दशक में निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामले में दर्ज एफआईआर पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से विवरण मांगा। छठ पूजा पर व्रती आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी से चेन्नई से 560 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।